शांति का अर्थ तो आज सभी जानते हैं। जब कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं, हे परमात्मा, उनकी आत्मा को शांति देना। अर्थात जाने अनजाने शांति का सच्चा दाता शांति सागर परमात्मा है, ये सब जानते हैं। परंतु क्या उसकी अनुभूति है? शांति का ज्ञान सबको है, परंतु शांति सर्वश्रेष्ठ गुण और शक्ति है, ये कोई जानता है? एक समय इस सृष्टि पर सुख शांति का पूरा साम्राज्य था। आज घर घर में मानसिक तनाव जनित अशांति का वातावरण है। परिणाम स्वरूप आज का मानव दिल के दौरे का शिकार है, साथ ही अन्य भी अनेक नए नए रोगों से वह आक्रांत है। डॉक्टरों का कहना है कि 92% रोग मानसिक तनाव और अशांति के कारण होते हैं। यही कारण है कि आज अनिद्रा, शक्तिहीनता, दुर्घटना और गरीबी बढ़ रही है। धार्मिक अंधविश्वास एवं कट्टरता को लेकर धर्म युद्धों का बाजार भी आज गर्म है। इतिहास साक्षी है, जितने युद्ध आज तक हुए हैं उनमें 78% धर्म के नाम पर हुए हैं। इस प्रकार धर्म सत्ता और राज सत्ता की लालसा ने काफी अशांति बढ़ाई है। धन धान्य से भरी पूरी इस धरती पर अब अकाल, महंगाई तथा अनाचार की वृद्धि हो रही है। अनेक समस्याओं से घिरा हताश निराश मानव आत्महत्या की ओर प्रेरित हो रहा है। विज्ञान की सुख सुविधाएं भी एक तरफ वरदानी तो दूसरी तरफ अभिशाप के निमित्त बन रही है। आज जब अणुयुद्ध की विकरालता विनाश के तांडव नृत्य की तैयारियां हो रही हैं, तब कौन शांति के सेज पर चैन की नींद ले सकता है? इस प्रकार हम अशांति के कारणों को एवं लक्षणों को तो जानते हैं, पर इनके निवारण का सही मार्ग नहीं जानते। अब हम तटस्थ बुद्धि से सोचें कि सुख शांति का दाता कौन है? अशांति की दुनिया में शांति की मनभावनी हवा कौन ला सकता है? यही कारण है कि शांति के लिए अधिकांश मनुष्य प्रभु की भक्ति व पूजा करते हैं और शांति की याचना करते हैं। जब किसी की मृत्यु होती है तो भी शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। शांति की स्थापना कोई जादू या कल्पना नहीं है। परमात्मा दुख और अशांति के मूल कारण विकारों को ज्ञान और योग की शक्ति से दूर करते हैं। विकारों की मलिनता तथा गरीबी से नर्क बनी हुई दुनिया दैवी दुनिया बन जाती है। परमात्मा कांटों की तरह दुख देने वाली आत्माओं को फूल समान सुखदायी बना देते हैं। शरीर और मन के गंदे वस्त्र को परमात्मा धोबी बनकर स्वच्छ बना देते हैं। आत्मा जो शुद्ध सोना जैसे सत्वप्रधान थी, विकारों की खाद से उसका जीवन श्रृंगार बिगड़ गया था, परमात्मा आकर पुनः दिव्य गुणों का श्रृंगार करते हैं तथा गरीब से अमीर, रंक से राजा बना देते हैं। इंद्रियों की गुलामी से मुक्त कर इंद्रिय जीत मालिक बना देते हैं। परंतु इस सुख और शांति की अनुभूति करने वाला कौन? क्या ये अनुभव शरीर करता है या उसके भीतर रही हुई कोई और चीज? पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश इन पांचों तत्वों से तो सभी परिचित हैं, किंतु सूर्य, चांद, सितारों से बाहर अखंड ज्योति महातत्व का बना शांति धाम, परम धाम अपने असली रूप में अपरिचित ही रहा है। यहाँ आत्मा मुक्त अवस्था में रहती है, इसलिए इसे मुक्ति धाम भी कहते हैं। इसी परम धाम से आत्माएं अपने अपने समय पर सृष्टि मंच पर अभिनय करने के लिए आती हैं। हम सब आत्माएं असल में इसी शांति धाम की मूल निवासी हैं। यदि यह बात यथार्थ रूप से हम जान लें, तो एक बेहद की राष्ट्रीय भावना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से एक नई मानवता का जन्म हो सकता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय युद्धों को हम सदा के लिए विदाई दे सकते हैं और विश्व में शांति की पूर्ण स्थापना हो सकती है। जैसे बिजली एक शक्ति है और उसके प्रयोग से रोशनी ऊर्जा आदि प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार शांति भी एक शक्ति है। शांति सागर की स्मृति से शांति की गहरी अनुभूति की जा सकती है। यह दिव्य शांति की शक्ति ही हमारे अंग अंग को शीतल बनाती है, हमें सुख शांति आनंद आदि गुणों का अनुभव कराती है, जिससे जीवन का सर्वांगीण विकास करते हम आत्माएं संपूर्ण बन जाती हैं। देह के धर्म अनेक हैं, परंतु आत्मा का स्वधर्म शांति है और विश्व कल्याण ही हमारा स्वकर्म है। संसार की अनेक प्रवृत्तियों में रहते भी प्रवृत्ति से न्यारा एवं कमल फूल के समान पवित्र रहना, यही हमारा स्वलक्षण है। शरीर में दो नयनों के मध्य में आत्मा रहती है। आत्मा की स्मृति से व आत्मा भाव में जीने से सच्ची शांति की अनुभूति होती है। जो हम नहीं है उसकी स्मृति से दुख मिलता है, और असल में जो हम हैं उसकी स्मृति से सच्ची शांति मिलती है। जैसा लक्ष्य होगा वैसे लक्षण स्वतः आएंगे ही, और ऐसे लक्षणों की धारणा से शांति की मंजिल पर पहुंचना सहज हो जाता है। मन इस शरीर का अंग नहीं, किंतु मन बुद्धि संस्कार आत्मा के अंग हैं। अतः मन अशांत नहीं, किंतु आत्मा शांत बनती है। पानी का सहज गुण गतिशील और समतल रहना है। सूर्य का स्वभाव प्रकाश देना है। गिर कुंजों का स्वभाव अडोलता और अचलता। चंद्रमा का स्वाभाविक गुण शीतलता है। उसी प्रकार मन की स्वाभाविक वृत्ति है शांति। अतः शांति की प्राप्ति के लिए मन की अपनी स्वाभाविक वृत्ति के अनुसार कर्म किए जाएं तो प्रत्येक आत्मा निश्चित रूप से शांतिपूर्ण बन जाएगी। शांति तो आपके गले का हार है, इस उपहार को स्वीकार करें। मन को मारे नहीं परंतु सुधारें। आधि व्याधि और उपाधि से भरी इस सृष्टि में अनेक प्रकार की आध्यात्मिक शक्तियां हैं। इनमें ज्ञान गुण और शक्ति, इन तीनों बातों का विशेष महत्व है। आज के मानव में ज्ञान बहुत है परंतु शक्ति कम है, यही अशांति का कारण है। धर्म से शांति आती है या शांति से धर्म बढ़ता है, यह एक सनातन प्रश्न है। इन सब शक्तियों का प्रादुर्भाव और विस्तार शांति में ही होता है। ज्योति अंधकार को मिटाती है, इसी प्रकार शांति की शक्ति के प्रकंपन वायुमंडल को शुद्ध करते हैं। साथ ही सभी भौतिक शक्तियों के नियंत्रण की शक्ति शांति द्वारा सहज ही प्राप्त होती है। शांति शांति के सागर परमात्मा की शक्ति है, इसलिए सर्वोच्च शक्ति है। दुख और अशांति के मूल कारण पाप कर्म होते हैं। अब विचारणीय बात यह है कि हम आत्माएं पापों से मुक्त पवित्र कैसे बने। पवित्रता एक प्रकाश मणि है जिसकी ज्योति से भ्रष्टाचार जनित अंधकार दूर हो जाता है। आज विश्व को ऐसे रूहानी पवित्रता के प्रकाश की आवश्यकता है, जिससे विश्व को वास्तविक नेतृत्व मिले और सच्चा मार्गदर्शन मिले। जीवन एक यात्रा है जन्म से मृत्यु तक की, और बीच में है कर्म का व्यापार। जीवन जीना भी एक कला है। इस कला को न जानने के कारण लोग अनेक बातों से स्वयं को एवं दूसरों को दुखी और अशांत करते हैं। कर्म अकर्म तथा विकर्म का ज्ञान अब परमात्मा ने हम आत्माओं को दिया है। श्रेष्ठ कर्म द्वारा सदा काल के लिए सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। ये सत्य है कि अशांति प्रेरित सभी कर्म आदि मध्य और अंत दुख ही देंगे। जैसा बीज वैसा फल, इस उक्ति के अनुसार सभी शांति से कार्य करें तो जरूर उसका परिणाम सुख शांति संपन्न ही होगा। बदला लेने की भावना के बदले स्वयं को बदल कर दिखाएं। इस शुभ भावना और पुरुषार्थ से जीवन में आमूल परिवर्तन आ जाएगा। भोगी जीवन का अंत दुखद है, इसलिए भोगी जीवन को योगी जीवन में बदलना अत्यावश्यक है। कर्म व्यवहार भी परमात्मा की याद में किया जाए तो तनाव दूर हो जाएंगे और कर्म कुशलता भी बढ़ जाएगी। शुद्ध सोने को जैसा चाहें वैसा मोड़ सकते हैं। कहते हैं झुकने वाला तो प्रभु का भी प्यारा है। इस मोड़ने की शक्ति से ही जीवन में सुख शांति आ सकती है। जब तक जीवन में अशुद्धि होगी तब तक यह परिवर्तन करने की शक्ति नहीं होगी। इसके लिए सर्वोत्तम साधन है योग। योग की पावन अग्नि में अपने पुराने संस्कार, स्वभाव, संबंध आदि सब में परिवर्तन सहज ही हो जाता है। सुख शांति के लिए दूसरों के पूर्ण परिवर्तन की प्रतीक्षा न कर स्वयं में परिवर्तन लाना है, क्योंकि राजयोग से आप शांति के सागर शिव परमात्मा से सुख, शांति, प्रेम, आनंद आदि की शक्ति को जान सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। साहब बनना आसान है परंतु सहयोगी बनना कठिन है। अतः प्रत्येक का सहयोगी बन स्नेह संपादन करें। प्रभु से हम कहते हैं हे प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। तो हम क्यों औरों के अवगुण अपने चित्त पर लेते हैं? हमें फूल की सुगंध जीवन में धारण करनी है, कांटों की दुखदाई वृत्ति नहीं। उन्नति की सीढ़ी सबके सामने आती है परंतु कई सीढ़ी रूपी परिवर्तन के चुनौती को स्वीकार नहीं करते हैं। हमें जीवन में आने वाले ऐसे परिवर्तन के मौकों को चूकना नहीं चाहिए। कहते सभी हैं कि अपकारी पर भी उपकार करना चाहिए, पर इस चुनौती को स्वीकार कर धारण कितने करते हैं? तो हमें शांति से सदा ये सोचना है मुझे अपने में परिवर्तन करना है। विश्व परिवर्तन मेरे परिवर्तन से होगा। इस सृष्टि पर अनेक प्रकार की क्रांतियों की अनुभूति हमने की है। सब क्रांतियों का लक्ष्य रहा है समाज में सुख शांति बढ़ाना। इन सब क्रांतियों द्वारा शारीरिक सुख सुविधाएं तो बढ़ी हैं, परंतु आंतरिक सुख और शांति का बढ़ावा नहीं हुआ। तो अब एक ऐसी क्रांति की आवश्यकता है जिससे हम सब आत्माओं की जन्म जन्मांतर की आश पूर्ण हो जाए। अपने आप को शरीर नहीं परंतु आत्मा समझ, एक परमपिता परमात्मा की संतान समझ आपस में व्यवहार करना है। उससे भाई भाई की दृष्टि तथा एक ईश्वरीय परिवार की भावना बढ़ती है। इस विशेष दृष्टि बिंदु से पारस्परिक मतभेद, झगड़े, वैर विरोध आदि सभी समाप्त हो जाते हैं। राजयोग द्वारा ये सामाजिक क्रांति वर्तमान में घटित हो रही है। इस क्रांति से एकता का नवनिर्माण होगा। अतः इस सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक क्रांति को समझना आवश्यक है। दान पुण्य का प्रभाव, परिणाम और प्राप्ति अल्पकाल की होती है। भूखे को अन्न देने से उसकी अल्पकाल के लिए तृप्ति होगी। वस्त्र दान भी अल्पकाल का ही है, पुनः अन्न वस्त्र की मांग बनी ही रहती है। अतः स्थाई चिरंतन प्राप्ति हो जाए उसके लिए किस प्रकार का दान किया जाए? धन पुस्तक खरीद सकता है दिमाग नहीं, धन अन्न खरीद सकता है पाचन शक्ति नहीं, धन बिस्तर खरीद सकता है निद्रा नहीं, धन मकान खरीद सकता है घर नहीं, धन दवाई खरीद सकता है परंतु स्वास्थ्य नहीं। आज की दुनिया में कई ऐसे हैं जिनके पास धन सौंदर्य है फिर भी दुखी अशांत हैं। इस विनाशकारी धन से उन्हें सच्ची शांति नहीं मिलती है। सभी अविनाशी सुख शांति के प्राप्ति की पुकार मचा रहे हैं। इनकी पुकार सुनकर कौन सा दान दिया जाए? रोग शोक के कारण आत्माओं द्वारा किए गए पाप कर्म हैं जिनसे छुटकारा दिलाने की शक्ति अन्य किसी दान में नहीं। एकमात्र राजयोग में ही विकर्म विनाश कर सजा से छुटकारा दिलाने की शक्ति है। सबको अतीन्द्रिय सुख शांति का अविनाशी अनुभव कराना ही सर्वश्रेष्ठ दान है। जैसे शांति की अनुभूति अपनी है ऐसे ही शांति की भाषा भी अपनी है। शांति की भाषा जानने का अभ्यास करना ही सच्ची शांति का अनुभव करना है। इस शांति की भाषा का संप्रेषण ही सर्वश्रेष्ठ विद्यादान है। कहते हैं ये सृष्टि एक रंगमंच है, हमारा घर ये नहीं है। सृष्टि एक मुसाफिर खाना है, तो मुसाफिर वापस घर लौटने की तैयारी अवश्य करेगा। संध्या समय घर वापस जाने की सहज वृत्ति सभी प्राणियों में सहज रूप से देखी जा सकती है। रात के बाद दिन और दिन के बाद रात, इस परिवर्तन की प्रक्रिया का पुनरावर्तन सृष्टि का स्वाभाविक क्रम है। ये बेहद का सृष्टि चक्र है। संसार शब्द का अर्थ ही है बहते, बदलते, घूमते रहना। काल चक्र निरंतर फिरता रहता है। स्वास्थ्य का चक्र इसी काल चक्र का प्रतीक है। सबकी जन जन्मांतर की आश है कि हमें शांति मिले, क्योंकि आखिर उस शांति धाम के ही हम निवासी हैं। वहीं से अभिनय करने सृष्टि मंच पर आए थे, अब थक गए हैं। ये नाटक अब समाप्त होने ही वाला है। काल चक्र के अनुसार अब वापस घर जाने का समय हो गया है। फिर से नई स्वर्गीय सुख शांति संपन्न सृष्टि की रचना होगी, नए कल्प का नया नाटक प्रारंभ होगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं, देह के संबंधों को भूलो और देखो विश्व घड़ी में कितने बजे हैं। आने वाले कल और कल के विश्व को याद करो, मुझ परमात्मा को याद करो। अब बस एक ही महामंत्र स्मृति में रखो कि मुझे शांति दूत बन सबको शांति दान करना है। ओम।